नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप ने जीत दर्ज की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में पंजाब एफसी और गोवा एफसी के बीच मुकाबला ड्रॉ पर खत्म। जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन कल से मुंबई में। और दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। चर्चा की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। ऑर्लियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वालिफायर मुकाबले में आकर्षि कश्यप ने वाइली को हराया। आकर्षि ने इससे पहले श्रेयांसी वालुशेट्टी को 21-19, 17-21, 21-13 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। बेहतरीन प्रदर्शन, अच्छी शुरुआत मिल गई है आकर्षि को।
जी हाँ, बिल्कुल क्वालिफाइंग दौर था और क्वालिफाइंग दौर में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अच्छे सहजता के साथ जीतते हैं और आपके जो स्मैश हैं बिल्कुल सटीक बैठते हैं तो उसका आपको निश्चित तौर पर आगे के जो कॉम्पिटिशन है उसमें अगले दौरों में बहुत आपको लाभ मिलता है। तो मैं समझता हूँ जहां तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है मेन्स और वेमेन्स और क्योंकि उभरते हुए खिलाड़ी हैं सारे।
जी, और श्रोता आपको बता दें कि आकर्षि ने इससे पहले लागोस इंटरनेशनल क्लासिक 2025 टूर्नामेंट में आकर्षि ने रजत पदक जीता था। तब से लेकर अब तक उनका यह असाधारण प्रदर्शन देखने को हमें नहीं मिला है। और पुरुष सिंगल्स में बात कर ले तो ली जिया ने 21-12, 21-18 से शंकर सुब्रमण्यम को हरा दिया है। वहीं पुरुष डबल्स में आज MR अर्जुन और हरिहरन अम सकरुनन का सामना जेरिक क्रॉल तथा आंद्रेस कॉल से होगा। यह प्रतियोगिता 22 मार्च तक फ्रांस में खेली जाएगी। मिक्स डबल्स में मेन्स डबल्स में इनसे भी उम्मीदें होंगी क्योंकि सात्विक और चिराज की जोड़ी इसमें खेल नहीं पा रही है।
जी हाँ, बिल्कुल हरिहरन हो और चाहे वो MR अर्जुन हो, अब MR अर्जुन के जो है नए पार्टनर आए हैं, पहले वो ध्रुव कपिला और विष्णु वर्धन के साथ खेला करते थे जोड़ी बनाकर, लेकिन अब उनके हरिहरन जो हैं इनके साथ वो दो टूर्नामेंट्स में खेले हैं, टर्की इंटरनेशनल और इंडिया इंटरनेशनल, दोनों में उन्होंने खिताब जीते हैं, अपने नाम किए हैं, तो ये एक बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। और रही बात सिंगल्स में, अगर हम बात करें डबल्स की तो ये बात हो गई कि इनसे काफी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आयुष शेट्टी जो है
जी,
ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल्स हो चाहे डबल्स हो या आपके विमेन्स के जो सीडिंग प्लेयर्स हैं उनमें ये इकलौते खिलाड़ी हैं। सीडिंग 8वीं इन्हें वरीयता प्राप्त है, तो इन्होंने जिस तरह से अपने प्रदर्शन को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है और जिस तरह से कंसिस्टेंट रहे हैं, 2023 का अगर आप वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप देखें वहां उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, दो बार किदांबी श्रीकांत को ये हरा चुके हैं और कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। विमल कुमार जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे वो इनके कोच हैं, तो अब इनका जो मुकाबला किरण जॉर्ज के साथ होगा वो भी भारतीय हैं, तो दो दक्षिण भारतीय खिलाड़ियों की बहुत ही जबरदस्त फाइट आपको इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। किदांबी श्रीकांत है, उनके सामने मैग्नस जोहानसन है डेनमार्क के, तो ये भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि पिछले साल ऑस्ट्रियन ओपन जीता था मैग्नस ने। और वहीं किदांबी श्रीकांत की बात करें तो 2022 के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने जीता नहीं है। सैयद मोदी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, वहां पर ये फाइनल तक पहुंचे। इसके अलावा मलेशियाई मास्टर्स टूर्नामेंट जो सुपर 500 की श्रेणी में आता है वहां पर भी ये फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन खिताब होता है, उनको खिताब का जो सूखा है लंबे समय से जो चला आ रहा है उसको खत्म करना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी।
जी, और उम्मीद करें कि ये ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें ये अपने सूखा को खत्म करे और टूर्नामेंट जीते। चर्चा कर लेते हैं फुटबॉल पर। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल पंजाब एफसी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए गोवा एफसी को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले को जीतकर एफसी गोवा ने अजय अभियान जारी रखा है। ये टीम 9 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई जबकि पंजाब एफसी 5 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है। गोवा एफसी के डिजान ड्राजिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
पंजाब ने मैच की शुरुआत में गेंद पर कब्जा बनाए रखा। मोहम्मद उवैस ने लगातार कई खतरनाक क्रॉस किए और 15वें मिनट में मेजबान टीम ने गोल पर पहला शॉट लगाया। पंजाब एफसी ने गेम पर नियंत्रण रखते हुए 27वें मिनट में गोल करके बढ़त बना ली। पहले हाफ के आखिरी समय में भी पंजाब ने अपना दबाव बनाए रखा। दूसरे हाफ की शुरुआत में पंजाब की टीम 10 खिलाड़ियों में ही सिमट गई। नुसुमुसी जूनियर को रेड कार्ड दिखा दिया गया। एफसी गोवा के लिए 53वें मिनट में ड्राजिक ने गोल करके मेहमान टीम को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। पंजाब ने स्टॉपेज टाइम में मजबूती से बचाव किया और अर्शदीप ने ब्रिसन फर्नांडिस के आखिरी शॉट को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। 10 खिलाड़ी होने के बावजूद पंजाब मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रही। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
काफी विशेष रहा यह मैच, 11 की जगह 10 खिलाड़ी खेल रहे थे।
बिल्कुल, और वो भी उस खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया जिसने गोल
किया था जी।
और ये सुंगुसी एफयोंग जो पंजाब के प्लेयर थे, उन्होंने ये गोल किया था, अपनी टीम को 8वें स्थान पर पहुंचाया। डेजान डॉजिक का बहुत ही शानदार प्रदर्शन था, उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो ये एक बड़ी बात है कि एफसी गोवा को अगर आप बराबरी पर रोकते हैं और वो भी इस स्टेज पर, तो ये वास्तव में पंजाब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप सिर्फ 10 खिलाड़ियों से खेल रहे थे
जी। और श्रोताओं आपको बता दें कि मोहन बगान जो पिछली बार के चैंपियन भी है, अभी शीर्ष पर है 4 जीत के साथ और दूसरे स्थान पर जमशेदपुर बनी हुई है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया मिशन के जरिए देश आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक की तैयारी कर पाए। खेल मंत्री ने संसद के प्रश्नकाल में बोलते हुए कहा कि सरकार कई मिशन के जरिए खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रही है।
खेलो इंडिया मिशन इसलिए लाया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में देश कॉमनवेल्थ की तैयारी भी कर पाए, ओलंपिक्स की तैयारी भी कर पाए, मेडल टैली में भी इंक्रीज कर पाए। ये मोदी गवर्नमेंट है जिन्होंने स्पोर्ट्स सेक्टर में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करा। पहले देश में स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया, बाद में खेलो भारत नीति, उनके बाद स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, और स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बाद देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अभी खेलो इंडिया मिशन के द्वारा देश को स्पोर्ट्स में एक नया हाइट पर ले जाने।
सरकार लगातार अलग अलग स्कीम्स के थ्रू खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है।
जी हाँ, निश्चित तौर पर, चाहे वो यूथ गेम्स हों, चाहे वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हों, चाहे बीच गेम्स हों, विंटर गेम्स हों, और ट्राइबल गेम्स अब तो छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आया है उसके बाद जो बहुत सारे खिलाड़ियों से जुड़े हुए मसले जो कोर्ट में उलझे हुए थे उनका निपटारा हो जाएगा बहुत जल्दी। और मैं समझता हूँ सही दिशा में, सही ट्रैक पर चल रही है भारत सरकार, और युवाओं को सबसे ज्यादा मौके मिल रहे हैं, ये अपने आप में एक उपलब्धि मैं कहूंगा सरकार की
जी। चर्चा कर लेते हैं स्क्वैश पर। जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन कल से 22 मार्च तक मुंबई में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अनाहत सिंह और रमित टंडन प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। टूर्नामेंट से पहले प्रेस वार्ता के दौरान भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य ओलंपिक में पदक जीतना है। अनाहत सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता के लिए बेसिक्स पर ध्यान दिया है।
I've mainly just been focusing on, you know, keeping sure that my basics are very good and that I'm playing at 100% of what I should be, because you just do your basic, you know, practice sessions as to what you usually do before, you know, tournaments and what you're familiar with. I think that's something that really helps me instead of, you know, changing too much, because that's not really my style. But always small changes do happen, but nothing too major in the last few months.
जैसा हमने सुना, अनाथ सिंह ने कहा कि बेसिक्स पे ध्यान देना है, और अभी एशियाई खेल जो होना है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, तो कह रही है पहला फोकस वो है, उसके बाद फिर पहली बार ओलंपिक्स में भी ऐड किया गया है इसको, तो उस पर भी नजर है इनकी।
जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अनाथ सिंह को अगर देखें तो जूनियर वर्ग में इन्होंने सिंगल्स में बहुत टाइटल जीते, लेकिन जो सीनियर वर्ग में आई तो वहां पर टीम और डबल्स तक इनकी उपलब्धियां सीमित हो गई। तो अब मैं समझता हूँ आप इनको सिंगल्स में पहचान बनाने का बहुत सुनहरा मौका रहेगा। और वहीं रमित टंडन जो है वो भी एक आकर्षण का केंद्र रहेंगे, उनको भी अगर आप देखेंगे उनका प्रदर्शन टीम स्पर्धाओं में काफी अच्छा रहा। एशियन गेम में तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस टीम स्पर्धा में, और 2022 के बाद बड़ा खिताब नहीं जीता है, 33 साल की उम्र है, लेकिन चलता है। मैं समझता हूँ अब ओलंपिक के दरवाजे खुले हैं, तो अब यहाँ भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली हर प्रतियोगिता होगी, जहां जो भी वो प्रदर्शन करेंगे वो उनके भविष्य की प्रतियोगिताओं में बहुत काम आएगा।
जी बिल्कुल। चर्चा कर लेते हैं क्रिकेट पर। हैमिल्टन में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 68 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड के 176 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका 107 रन पर ही सिमट गई। डेवन कॉनवे को 60 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बेहतरीन प्रदर्शन किया इस मुकाबले में कॉनवे ने, क्योंकि अगर हम पिछला 2-3 साल देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स में भी उतना अच्छा प्रदर्शन कॉनवे का नहीं रहा था, फिर अपने टीम के लिए भी उतना अच्छा नहीं खेल पाए थे, विश्व कप में भी मौका नहीं मिला, तो अब अच्छी वापसी करते नजर आ रहे हैं।
जी हाँ बिल्कुल, परफेक्ट टीम मेंबर क्या होता है वो उन्होंने दिखाया, क्योंकि वो ताबड़तोड़ शुरुआत से बिल्कुल बचे। अगर आप पहले 6 ओवर देखेंगे पावर प्ले में कोई विकेट नहीं खोया इस टीम ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। और न्यूजीलैंड जो पिछले मुकाबले में जो न्यूजीलैंड का जो हश्र हुआ था वही हश्र इस बार साउथ अफ्रीका का हुआ, जहां वो 100 रन नहीं बना पाया था, यहां इस बार उन्होंने साउथ अफ्रीका को 107 रन नहीं बनाने दिए। ये तो भला हो, मैं कहूंगा केशव महाराज पर जो क्लार्कसन ने जो 3 छक्के और 1 चौका लगाया आखिरी ओवर में, वो एक वाकई मनोबल बढ़ाने वाली उपलब्धि थी, जिसका जो बहुत काम आई न्यूजीलैंड के लिए, तो मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड अब बराबरी पर आ गया, सीरीज और ज्यादा रोमांचक हो गई है।
जी और श्रोता आपको बता दें कि पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया था, 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। और चर्चा कर लेते हैं रैंकिंग पर, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर आईसीसी महिला एक दिवसीय रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ 7वें पायदान पर पहुंच गई है, जबकि उप कप्तान स्मृति मांदना शीर्ष स्थान पर कायम है। रैंकिंग में यह बदलाव न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी सोफी डिवाइन के 2 स्थान फिसलकर 9वें नंबर पर आने के बाद हुआ है। भारत की जेमिमा रॉड्रिक्स 12वें स्थान पर बरकरार है। अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी, हालांकि अच्छा नहीं रहा था, T20 हम वहां पर जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन एक दिवसीय सीरीज हम जीत ना सके थे, लेकिन उसके बाद जो लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका विश्व कप में भी ले ली, उसकी बदौलत अब तक वो बरकरार है पहले।
बिल्कुल, और मैं तो कहूंगा कि आपने जो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, तो ऑस्ट्रेलिया में हॉबार्ट में और ब्रिस्बेन में इन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई थी हरमनप्रीत कौर ने, और ठीक है सोफी डिवाइन के खराब प्रदर्शन का इन्हें फायदा हो गया है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस भी बुरा नहीं रहा। 2 हाफ सेंचुरी विदेश में जाकर अगर आप बनाते हैं और वो भी बैक टू बैक, तो उसके अपने मायने हैं।
जी बिल्कुल। और अब चर्चा कर लेते हैं आईपीएल पर। इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज जेम्स फोस्टर को आगामी आईपीएल टूर्नामेंट के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। फोस्टर न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग के नेतृत्व वाले सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ में शामिल होंगे, जिसमें माइकल हसी बल्लेबाजी कोच और एरिक सिमंस गेंदबाजी कोच के रूप में काम करेंगे। सीएसके के आगामी आईपीएल में अपने अभियान की शुरुआत 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करेगा। एक नई रिजीम के साथ आई है सीएसके, पहले हम अनुभव को ज्यादा देखा करते थे, लेकिन अब मिक्स्ड है, एमएस धोनी जहां है वहां आयुष मात्रे जैसे खिलाड़ी भी हैं, संजू सैमसन जो टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे तो उनको भी मौका इस बार मिला है चेन्नई में खेलने का, तो कैसे देखते हैं आप इसको?
देखिए, जो टीम पिछले आईपीएल में 14 में से केवल 4 मुकाबले जीत पाई हो
जी,
तो अब उससे आप बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। आप जैसे आपने हसी का जिक्र किया, बेहतरीन बैटिंग कोच, आपने सिमंस का एरिक सिमंस का जिक्र किया, बेहतरीन बॉलिंग कोच, कई राष्ट्रीय टीमों के साथ वो जुड़ चुके हैं। जेम्स फोस्टर को देखें, अब ये फील्डिंग कोच एक ऐसे हैं जो इंग्लैंड की टीम के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, उसके बाद ये न्यूजीलैंड की टीम के साथ जुड़े हुए, उसके बाद अगर आप आईपीएल में देखें तो ये केकेआर की टीम के साथ 2020 से लेकर 2023 तक ये जुड़े रहे, जहां 2021 में केकेआर ने जो है फाइनल में जगह बनाई थी, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के सामने इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर आप इंटरनेशनल लीग T20 टूर्नामेंट देखें तो वहां पर भी ये डेजर्ट वाइपर्स जो कि विजेता टीम थी, उसके ये स्पोर्ट्स स्टाफ थे में थे, उनके कोच थे, द 100 में बर्मिंगम फिनिक्स के असिस्टेंट कोच रहे हैं, तो एक कोचिंग का बहुत अच्छा खासा तजुर्बा है इनके पास। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्टेप है, और साथ में जो आपने संजू सैमसन की बात कही, तो ये सब मिलकर जो है आप देखना टीम बिल्कुल बदले हुए तेवर के साथ उतरने वाली है इस बार।
जी, और कितना रोमांचक होगा ये आईपीएल इस नजरिए से कि अभी जो हमारी टीम गई थी जो विश्व कप जीती है, नए नए खिलाड़ी हैं उसमें शामिल, अंडर 19 के अभी हाल ही में जो नमन अवार्ड हुआ था उसमें भी सब लोग एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, तो अंडर 19 के खिलाड़ी भी हैं, अभी विश्व कप चैंपियन बने, और दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर ले जो अब तक क्रिकेट में कायम है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे, लोगों को उम्मीद रहती है उनसे, तो कितना कांटेदार और कितना महत्वपूर्ण होगा ये आईपीएल?
देखिए, जो युवा खिलाड़ी को जब ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इन सबका साथ मिलता है, तो उसके प्रदर्शन में या उसके मनोबल को बढ़ाने में बहुत वो मददगार साबित होता है। अब देखिए, संजू सैमसन ने जो लगातार तीन अच्छी पारियां खेली T20 वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा कि मैंने इतने सारे मैचों में शायद मेरे पास उतना बड़ा तजुर्बा नहीं था, लेकिन मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते हुए देखता था और उनको जो देखने का मेरा अनुभव था वो मेरे बहुत काम आया।
जी, और इस टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी भी नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा भी है, और आज तो मुंबई इंडियंस में जो प्रैक्टिस सेशन आज से उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, रोहित शर्मा काफी फिट नजर आ रहे हैं, और एक दिवसीय क्रिकेट जो विश्व कप 2027 में होने वाला है साउथ अफ्रीका में, तो उसमें भी खेलते नजर आने की उम्मीद की जा रही है पूरी।
जी बिल्कुल, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, ये सब खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं, और वनडे में तो रोहित शर्मा भी। अब मैं कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि मुंबई टीम जो है ना अपने ऊपर प्रेशर ना ओढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर जब अपने ऊपर ओढ़ते हैं तो वो उसका बहुत नकारात्मक असर होता है, तो ये कुछ एक मनोबल जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उससे थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखने की जरूरत है उन्हें।
जी, और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।